Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Shuddhatmane Namah. Samyak Darshana Charana Guna Payaku Karma Kipay Kevala Jnana Upaya Prabhu Vae Bhajo Shivaray Jinavani Ke Jnanate Ota Tattva Shraddha Charan Dhari Kevala Lahe
लब्धिसार ग्रंथ जो आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने लिखा है उसके आधार से यहाँ कर्णानियोग संबंधी कुछ अपनी चर्चा चल रही है। यहाँ तो कर्म संबंधी जो पारिभाषिक शब्द है उसको हम देख रहे थे। हमने देखा है कि जीव और कर्म अनादि से ही बंधी हुई अवस्था में पाए जाते हैं। जीव मोह राग द्वेष रूप परिणाम करता रहता है और हर समय कर्मों का बंध होता है। यहाँ हिंदी में पृष्ठ संख्या 43 गुजरात यानी यहाँ चौथा नंबर चैप्टर शुरू होता है उसका सेकंड पेज कौन सा नंबर है
40
सेकंड पेज के अंत में चैप्टर के सेकंड पेज के अंत में जहाँ लिखा है हमने अनेक बार पढ़ चुके हैं मिला हाँ उसके नेक्स्ट वाला पैरेग्राफ
ओके
पंचलब्धि क्या है उसके समझने के पहले पारिभाषिक शब्द हमें देखना है जो हमने कल कर्णानियोग परिचय के आधार से देखे थे वही बात यहाँ पर रिपीट होगी। ऐसा नहीं समझना कि कल बहुत कुछ अलग लिया और आज विषय बदल दिया वो बात नहीं विषय वही चलेगा। हम पहले अनेक बार पढ़ चुके हैं कि हम कर्म का बंध चार प्रकार से बता सकते हैं। कल हमने देखे ना चार प्रकार के बंध याद है ना हाँ मनीष भाई कौन कौन से चार प्रकार देखे प्रदेश बंध हाँ प्रकृति बंध
स्थिति बंध
हाँ
रस बंध और प्रदेश बंध
हाँ प्रदेश बंध प्रकृति बंध एक साथ लेना दोनों प्रकृति पहले का हो या प्रदेश पहले का तो प्रकृति बंध प्रदेश बंध क्यों एक साथ रखना क्योंकि वो दोनों ही योग के कारण बनते हैं और स्थिति और अनुभाग कषाय से बनते हैं इसलिए उनकी जोड़ी एक साथ रखेंगे हम तो उसी को यहाँ दोहराया है। जिन कर्म प्रकृतियों का बंध होता है वह तो प्रकृति बंध है। जितनी संख्या में कर्म परमाणु बनते हैं परमाणुओं की उस संख्या को प्रदेश बंध कहते हैं। ये कल की रिविजन है। एक समय में अनंत कर्म परमाणु बनते हैं ये जो समय एक समय में जितने बंधे ना तो बद्ध है ने बंधे हुए कर्म उसका नाम क्या है वो लॉर्ड जो आया एक समय में अनंत का उसको कहते हैं समय प्रबद्ध एक समय में बंधे हुए एक समय में जितने परमाणु कर्म के बंधे हैं उस सभी परमाणुओं को इकट्ठा नाम क्या है एक समय प्रबद्ध पूछेंगे कितने परमाणु बंधे हैं तो एक समय प्रबद्ध प्रमाण बंधे तो उसका प्रमाण कितना है तो अनंत है क्यों हर्षद भाई अनंत बता देना सब जगह
मेरा हिंदी का
तो असंख्यात और अनंत में कुछ फर्क है क्या
हाँ बहुत फर्क है असंख्यात ये इन्यूमरेबल है और अनंत है वो इन्फिनिट है परंतु हम साइंस वाले इन्फिनिट कहते तो उसमें भेद नहीं करते परंतु यहाँ अनंत के भी अनंत भेद है जो केवल ज्ञानी के ज्ञान का प्रत्यक्ष ज्ञानियों का विषय है। हम तो बस आगम से कह सकते कि ये जीवों की संख्या अनंत है और ये पुद्गलों की संख्या अनंत है उसमें जो कोई वेरिएशन है वो केवल ज्ञानी तो प्रत्यक्ष जानते हैं। अभी हम देखते आगे इस समय प्रबद्ध कहते हैं अर्थात एक समय में बंधने वाले कहते हैं। बंध होते समय यह निश्चित होता है कि वह कर्म अधिक से अधिक कितने काल तक जीव से निबद्ध ने बंधा हुआ रहेगा और वह कब अकर्म रूप होकर निकल जाएगा। जब हम कहते हैं कर्म का उदय होगा यानी क्या होता है, वो परमाणु खिल जाते हैं, यानी वो कर्म रूप थे तो अभी अकर्म रूप हो जाते हैं। अकर्म होते हैं क्या होता है, वो परमाणु छुट्टे हो गए या अन्य स्कंध में परिवर्तित हो जाएंगे, उसका कुछ भी हो सकता है, कारमाण वर्गणा भी हो सकता है, सिंगल परमाणु भी हो सकते हैं, आहार वर्गणा भी हो सकता है, तो उसका परिणमन उसके अपनी योग्यता से बदल जाता है। इस कालावधि को स्थितिबंध कहते हैं। उन कर्म परमाणुओं में फल देने की जो शक्ति है उसे अनुभाग बंध कहते हैं। इतनी बातें तो हमने कल देखी थी।
ये जब बनता है, जब ही स्थिति बंद हो जाता है,
हाँ, हाँ,
तो फिर बाद में कभी उसको पहले लाके निर्जरा कर सकते हो, ऐसा कुछ है?
हाँ, हाँ, हाँ। ये तो जब बनता है ना तब ये बातें कहने में कि बंधा तब स्थिति कितनी पड़ी, तो आपका प्रश्न है क्या बाद में उसको जल्दी उदय में ला सकते हैं? तो हाँ, तो बंधने के बाद जब सत्ता में पड़े हुए कर्म है तो उनमें निरंतर कुछ न कुछ वेरिएशन होता है, क्योंकि जीव के परिणाम जैसे चल रहे है उस परिणाम के अनुसार नया बंध तो होता ही होता है, पुराने बंधे हुए में भी बहुत सारे उथल पुथल हो जाती है, तो उसमें भी स्थिति घट भी जा सकती है, कितने ही कर्मों की स्थिति बढ़ भी सकती है। तो ये कैसे होता है, पहले हम पारिभाषिक शब्द सीखेंगे, उसके द्वारा हम उसकी भी चर्चा करेंगे। अब बंध होने के पश्चात कर्म जीव के प्रदेशों में पड़ा रहता है, बंधा हुआ रहता है, कल हमने उसको विशिष्ट बंध कहा था। कौन सा संबंध होता है उसका? संश्लेष संबंध। वो जीव से छूटा नहीं पड़ सकता, तब तक अन्य भाव में भी वो जीव के साथ रहता है। अभी जो सत्ता में पड़ा रहना उसको क्या कहते हैं? सत्ता। बंधा हुआ है ना, अभी उदय में नहीं आया है, बंद हो गया है, उदय होने तक वो जीव के सत्ता में रहेगा, उसको कहेंगे कर्म की सत्ता या सत्व। कर्म का बंद होने के पश्चात विशिष्ट काल तक उदय या उदीर्णा नहीं होती, उसे आबाधा काल कहते हैं। क्या कहना चाहते हैं? देखो, जब कर्म बनता है तो उसमें निषेक रचना हो जाती है, ऐसे जीव के प्रदेशों में कोई ऐसे रचना यानी कोई ऐसे वहां लाइनें वगैरह कुछ नहीं होती है कर्म की। ये तो बताने का ग्राफिकल तरीका है, जिसे आपके स्टॉक का भाव ऊपर नीचे होता है तो उसका ग्राफ बताते हैं, तो अपनी तिजोरी में भी ऊपर नीचे होता है कि डॉलर का भाव या रुपए का भाव हमारा गिरता है तो क्या होता है, तो पैसे भी ऊपर से नीचे गिरते हैं, क्या होता है?
एक ही भाव में सत्ता में पड़े रहता है।
सत्ता में पड़ा रहता है उसका कुछ भी हो भाव, अपने लिए तो नहीं के बराबर है ना। यहाँ तो बात नहीं चल रही है कि बंधने के बाद, देखो अभी मान लेते हम कि किसी ने वो मिथ्यात्व कितना अधिक से अधिक बनता है मालूम है, मिथ्यात्व की स्थिति उत्कृष्ट, एक समय में मिथ्यात्व कर्म बंधा तो अधिक से अधिक कितने काल का बंधा, स्थिति बंध मैक्सिमम कितना हो सकता है? 70 कोड़ाकोड़ी सागर। कोड़ाकोड़ी का अर्थ क्या है? करोड़ मल्टीप्लाइड बाय करोड़ इज इक्वल टू कोड़ाकोड़ी, और ऐसे कितने? 70 और आगे क्या लिखा है? सागर। तो एक सागर कितना होता है? 10 कोड़ाकोड़ी पल्ल्य का, और एक पल्ल्य क्या होता है? वो बहुत बड़ा खड्डा करो, उसमें वो रोमकंड से भरो, 100 साल के बाद एक रोमकंड निकालो, जब खाली होगा तो एक पल्ल्य होगा।
उसको अनंत ही कह दिए तो क्यों फर्क नहीं होगा ना? इसको अनंत ही कह दिया तो
वो अनंत नहीं होता है।
अनंत
से
सागर तो असंख्यात है, सागर की जो समयों की संख्या, देखो एक सेकंड में सैकड़ों आवली और एक एक आवली में असंख्यात समय होते, फिर भी हमने इतने सारे वर्ष और सागर देखे, एक पल्ले में भी असंख्या, एक पल्ले के असंख्यातवे भाग में असंख्यात अवज वर्ष होते, तो वो कितना बड़ा काल है, फिर भी वो अनंत नहीं होता, वो असंख्यात वाला। तो एक समय में बंधे हुए मिथ्यात्व की स्थिति अधिक से अधिक इतनी हो सकती है, तो उसमें ऐसा नियम है उस स्थिति के प्रोपोर्शन में 7000 वर्ष तक उस समय में बंधे हुए कर्मों की फिरना नहीं होगा, उसका उदय नहीं होगा, उसके पहले बंधे हुए का चलेगा, क्योंकि वो तो अनादि से बनता आया है, तो नया नया बंध होता है, पुराने का उसमें से निकल जाते। तो अभी इस विशिष्ट समय में बंधा हुआ है वो 7000 वर्ष तक उसका कुछ नहीं, खिरना नहीं होगा, तो तो उसको क्या कहते हैं, आबाधा काल। आपके कर्णानियोग परिचय पुस्तक में उसकी फिगर थी आबाधा काल की, इसमें भी थी क्या? नहीं, यही इसी पे है, दो पेज आगे 46, यानी आपके इसमें एक दो पेज आगे मिल गए, जहां पढ़ रहे थे उसी के दो पेज आगे। हाँ हाँ हाँ, वो नहीं, आप बहुत आगे चले गए,
43
पर है ना, हिंदी में 46 है। कहाँ मिला चेतना,
क्या लिखा है 43
उसमें? वो लिखा है आबाधा काल प्रथम निषेक और अंतिम निषेक।
ये देखिए, ये
आप आगे
वाली है, नहीं 43 पे है।
अच्छा,
प्रथम निषेक अंतिम निषेक,
अच्छा वहाँ लिखा है ना, 43 में वही लेना। तो देखो, ये हमेशा अपने शास्त्रों में, ग्रंथों में वर्तमान काल नीचे बताते हैं, वर्तमान समय, और भविष्य के जो समय है ऊपर बताते हैं। ऊर्ध्व रचना होती है समयों की, जब कहीं भी काल की बात होती है तो वर्तमान का समय नीचे, और फिर यहाँ अभी जो आड़ी लाइनें यहाँ बताई है निषेक में, देखो यहाँ जो निषेक बताया ना, ये नीचे वाला है वो वर्तमान समय है, फिर ये एक समय आगे, फिर एक समय आगे, इस तरह से ये सारे भविष्य के निषेक कहलाएंगे। तो आबाधा काल में क्या होता है कि उस काल में वहां कोई निषेक रचना नहीं है, ये बंधे हुई की बात चल रही है। दो बातें होगी, एक तो सत्ता में पड़े हुए और एक तो नए बंधने वाले। तो यहां जो आपके वहां फिर देख रही है, नीचे बंध का समय है, वहां से ऐसे वर्टिकल लाइन है, उसको आबाधा काल कहा। तो वहां कर्म के कोई परमाणु नहीं है। अब यहां निषेक का अर्थ क्या होता है, ऊपर लिखा है ना निषेक, निषेक यानी लॉट, परमाणुओं का लॉट, कर्मों का, कैसा कि जो एक साथ में उदय में आने वाले हैं उसको निषेक कहेंगे। तो ऐसे एक समय, दूसरे समय में, तीसरे समय में, चौथे समय में जितनी स्थिति बांधी है उतने समय तक लगातार एक एक समय में एक एक निषेक वहां बन जाता है। यानी कुछ परमाणु है, अभी हम जो 70 कोड़ाकोड़ी सागर की बात देखी थी, 7000 वर्ष का वहां आबाधा काल, उसमें कोई भी निषेक नहीं होगा उस बंधे हुए लॉट में से। एक समय में अनंत परमाणु बंधे, जिसको हमने समय प्रबद्ध कहा, जब बंधा तब ऐसी उसमें रचना हो गई कि नीचे आबाधा काल हुआ। 7000 वर्ष तक कोई भी वहां परमाणु उस समय बंधे हुए के नहीं है, उसके बाद 7000 वर्ष और एक समय, दूसरा समय, तीसरा समय, चौथा समय, कब तक? 70 कोड़ा कोड़ी सागर के जितने समय है उतने प्रत्येक समय में एक एक लॉट वहां पड़ा रहता है। तो एक समय में कितने ग्रहण किए होंगे हमें इमेजिन करना आप, और वो भी प्रत्येक समय में वो कितने परमाणु की संख्या, ये भी गणित निश्चित है, हम गणित में नहीं जाएंगे अभी। इसीलिए वहां ऐसे ऊपर टेपरिंग दिखा है ना, यहां भी आपके सामने जो फिगर है नीचे का निषेक बड़ा दिखाया और ऊपर का छोटा दिखाया है, ये लगातार कुछ कम कुछ कम कुछ कम ऐसे 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक इस तरह से निषेक रचना होती है। अब उससे हमें कुछ अभी यहां नहीं लेना देना, वो गणित में वो सारे प्रकरण आते हैं कि जब आगे समय दर्शन होता है तो किस तरह से वो उसमें ऊपर के परमाणु कितने नीचे आते हैं, कितनी निर्जरा होती है, भगवान ने जाना है तो सब बताएंगे। तो हम तो बिल्कुल यहां स्थूल चर्चा हुई अभी, तो यहां आबाधा काल लिखा है और नीचे का निषेक जो पहला है उसको प्रथम निषेक कहा, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, जो अंत का जो होगा उसको अंतिम निषेक कहेंगे। हर समय जितने कर्म बनते हैं, विज्ञानावरण बनता है, दर्शनावरण बनता है, सब में ऐसी निषेक रचना अपनी अपनी अलग होगी। निषेक रचनाएं हम ये ग्राफ निकाल रहे हैं। कर्म तो यूनिफॉर्मली स्प्रेड अप है पूरे आत्म प्रदेशों में, वहां कोई ऐसी लाइने नहीं बनती है, समझिए ना। तो अभी ये हमने अभी निषेक क्या होता है उसको देखा, क्या होता है निषेक, एक समय में जो उदय में आने योग्य परमाणु है उसका जो लॉट है, उसका जो समूह है, उसको निषेक कहते हैं। फिर आना अपने पेज पर। तो बंद होने के पश्चात उस समय में बंधे हुए परमाणुओं में से जब तक उदय आने योग्य नहीं है उस काल को आबाधा काल कहते हैं। तो यह आबाधा काल में कोई उदय नहीं आता होगा कर्मों का, पूर्व में सत्ता में पड़े हुए का उदय चलेगा। अभी नया बंधा हुआ, बनते ही उसका उदय नहीं होगा कभी। अभी हम कुछ शुभ भाव कर रहे हैं, पुण्य प्रकृतियां बन रही है, हमने कल देखे पुण्य प्रकृतियां किसमें होती है, घाती में क्या अघाती में, अघाती में। तो हम शुभ भाव कर रहे हैं, कुछ पुण्य प्रकृतियां बन रही है, तो बंधी हुई सत्ता में पड़ी रहेगी। उसका फल अभी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसका तो आबाधा चलेगा। और यथा योग्य काल में उसकी निषेक रचना होगी, और निषेक रचना में से अभी तो एक समय की निषेक रचना, फिर दूसरे समय की। अब जब फल मिलेगा तो कैसा मिलेगा, अनेक समयों में अलग अलग बंधे हैं, और जिसकी जिसकी मैच्यूरिटी आज होने वाली है उन सबका फल इकट्ठा मिलेगा। हम एक समय में जितना बांधा है उसका एक समय में तो फल मिलने वाला ही नहीं है। हमने अभी स्वाध्याय किया है, एक समय की बात करेंगे तो उसका सबका फल एक समय नहीं, उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ इतने काल में, जितने सागर का कर्म बांधा है उतने काल में उसका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, तो उसमें से तो एक समय में एक ही निषेक खिरेगा। फिर कभी दूसरे समय में कोई अन्य परिणाम किए उसमें से भी वो सारे डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। तो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ तो अभी हम जब उदय आते हैं तो अलग अलग समयों में बंधे हुए क्या, इसका एक निषेक, इसका एक, इसका एक, इसका निषेक, तो उसका फल कैसे मिलेगा, अभी उसमें जो कुछ एग्रीगेट होगा तब।
ये पुण्य के कर्म का एक लॉट होता है, पाप का एक लॉट होता है, अलग होता है।
हाँ, अलग होता है। साता वेदनी अलग है, असाता वेदनी अलग है,
तो दोनों के एक साथ भी आ सकते हैं, उनका टाइम हो गया तो
नहीं, वो अल्टरनेटली उसमें अल्टरनेशन हो सकता है। अच्छा। और उसमें भी बहुत सारे वेरिएशन है, कभी कभी वो साता असाता रूप हो जाते हैं, असाता साता रूप होते हैं, उसमें भी संक्रमण चलता है। देखो कभी हम देखते ना कोई बहुत जिसने अभी मंदिर बंधवाया है, शास्त्र दान किया है, ऐसे कुछ शुभ भाव की है, बाद में क्या होता है ऐसे परिणाम पलट जाते हैं, ऐसे तीव्र पाप के परिणाम हो जाते हैं उसके। अरे मैंने इतना पैसा इतना क्यों खर्चा किया, मैं घर बांधता, मैं कोई स्टॉक में रखता तो मैं अभी आज कितना कमाता, ऐसे कुछ परिणामों की विचित्रता हो जाती है, वो साता रूप बांधे हुए असाता रूप हो जाते हैं, ऐसा भी हो सकता है। परिणामों के कारण नया बंध तो होता ही होता, पुराने में भी परिवर्तन होता। कभी कभी पहले पाप किया हुआ है और अभी उसके उसमें चल रहा है, वो तत्व विचार में चल रहा है, उसके शुभ भाव हो रहे हैं, तो पहले के वो परमाणु सजातीय में ऐसा परिवर्तन होता है। ज्ञानावरण पलटकर दर्शनावरण नहीं होगा, परंतु वो जो सजातीय प्रकृति, हमने सुबह उत्तर प्रकृति देखी ना, उसके आपस में ऐसा होगा, पर आयु में संक्रमण नहीं होगा, नरकायु बदलकर देवायु नहीं हो जाएगी, ऐसे उसके कुछ नियम होते हैं। अब हम बढ़ेंगे, अभी इसके हमें क्या है, यहाँ तो पारिभाषिक शब्द हमें सीखने हैं। आबाधा काल क्या है, बंधने के पश्चात कुछ काल तक उस समय में बंधे हुए कर्म उदय में नहीं आएंगे, उसको कहेंगे आबाधा काल। आबाधा काल के पश्चात कर्म उदय में आना शुरू होता है, अर्थात फल देकर खिर जाता है। उदय में आना का अर्थ क्या है, खिर जाना, उसको सामान्य निर्जरा भी कहेंगे, वो मोक्ष मार्ग वाली निर्जरा नहीं है। जिसको हम संवर निर्जरा कहते हैं वो वाली निर्जरा अलग, परंतु हर समय जैसे कर्म बनते हैं एक समय प्रबद्ध, वैसे एक समय प्रबद्ध कर्म परमाणु खिरते भी है। हमने कल वो टाकी लाई थी ना भरी हुई, पांच नल से पानी आता है, पांच में से जाता है, तो जो आता है उसको हम बंद कहेंगे, जाता है उसको निर्जरा कहेंगे। वहां कोई ऐसे आता जाता नहीं है, वो तो समझाने का तरीका है। तो ऐसे सामान्य से जो खिरना होता है उसको भी निर्जरा कहेंगे, परंतु उसी को उदय कहते हैं। और उदय में आने वाले की जितनी वहां अनुभव होगा, बंधा हुआ वो तो डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, उदय में आते आते क्या हो जाता है, अलग अलग समयों में बंधे हुए जिसकी जिसकी अभी आज फल यानी स्थिति पूरी हुई है उनकी एक साथ उसका फल मिलता है। कभी ज्यादा अनुभव वाले बंधे थे, कभी कम अनुभव बंधे थे, तो उसका जो जितना फल होगा उसका भी वर्तमान में मिलता है। तो यह सामान्य निर्जरा है, मोक्ष मार्ग वाली निर्जरा नहीं है। तो जिस अभी हमने देखा जो एक समय प्रबद्ध बनता है तो एक समय प्रबद्ध खिर भी जाता है हर एक कर्म में से, जैसे ज्ञानावरण के अपना, मिथ्यात्व की अपनी, चारित्र मुनि की अपनी अपनी। इस रीति से जीव की सत्ता में अनंतानंत कर्म, अभी अकेला अनंत नहीं कहा, अनंतानंत कर्म सत्व रूप से नहीं सत्ता में पड़े थे रहते हैं। उनमें प्रति समय एक समय प्रबद्ध बनता है और एक समय प्रबद्ध खिर जाता है, उदय में आता है, और कर्म की सत्ता हमेशा बनी रहती है। क्योंकि परिणाम अलग अलग होते हैं, अलग अलग टाइप के, अलग अलग अनुभव वाले, अलग अलग स्थिति वाले कर्म बनते ही रहते हैं। और ये कब से चला आ रहा है? अनादिकाल से। कब तक चलता रहेगा? हाँ बोलो भाई, कब तक चलता?
निर्जरा नहीं कर लेते
हैं। निर्जरा तो हो रही है ना?
नहीं, वो सकाम निर्जरा।
अच्छा, यानी जब मोक्ष मार्ग जब तक शुरू नहीं होता है तब तक इतना ही चलता रहेगा। मोक्ष मार्ग शुरू होने पर फिर बंध में कुछ कटौती हो जाएगी और निर्जरा बढ़ेगी। एक समय में बंधे हुए परमाणु एक साथ उदय में नहीं आते। क्या कहा? जो अभी हमने देखा ना, आबादा होती है और निषेक रचना हो गई, उसका अर्थ क्या है? वो अलग अलग समयों में उदय में आने वाले हैं। तो एक समय में बंधने वाले अलग अलग समयों में उदय में आते हैं, और अलग अलग समयों में बंधे हुए जिनकी एक साथ स्थिति आ गई वो एक साथ उदय में आ जाएगी। परंतु आबाधा काल पूरा होने पर अनंतर समय से, अनंतर का अर्थ है उसके नेक्स्ट वाला, बीच में अंतर छूटे के बाद बिना छूटे आगे वाला, यानी 7000 वर्ष की आबादा है तो 7000 वर्ष और एक समय, उसको अनंतर समय कहा। उस समय से लेकर कर्म की स्थिति के अंत समय तक निरंतर, निरंतर यानी हर समय कुछ न कुछ परमाणु खिरते रहते हैं। एक समय में बंधे हुए कब तक खिरेंगे? आबादा काल से लेकर, जैसे 70 कोड़ा कोड़ी सागर का मिथ्या तो कर्म बांधा किसी ने, तो 7000 वर्ष के बाद उसका उदय शुरू हुआ। उस एक समय में बंधा हुआ का उदय कब तक चलेगा? 7000 वर्ष के बाद एक समय से लेकर दूसरा तीसरा समय से लगातार 70 कोड़ा कोड़ी सागर वर्षों तक। तो 70 कोड़ा कोड़ी सागर वर्षों में कितने हो जाएंगे, इमेजिन करना।
तो 70 कोड़ा कोड़ी सागरों का बंधा है तो 7000 वर्ष के बाद है, तो 7000 की गिनती उसमें नहीं होती,
उसमें नहीं होती, निषेकों में नहीं होती। स्थिति हम कहेंगे क्योंकि स्थिति तो अंतिम निषेक कब गिरेगा? 70 कोड़ा कोड़ी सागर के बाद। परंतु पहले उतने काल में, आबादा काल में, उसमें से कोई निषेक नहीं था, उसके पश्चात उसका उदय शुरू हुआ। तो हम स्थिति कितनी है? 70 कोड़ा कोड़ी, परंतु उदय काल कितना है? तो आबादा काल को माइनस करो उसका, उतना उदय काल कहलाएगा।
उनका एक एग्जाम्पल देंगे आप, जो ऐसा मिथ्यात्व में बना हुआ है, जो मिथ्यात्व होते हुए जो बनता है ये कर्म।
हाँ, ये मिथ्यात्व कर्म की बात अभी देखिए हम।
लेकिन एक एग्जाम्पल मिथ्यात्व
कैसा, मिथ्यात्व का अभी देखो, इतना लंबा काल कौन करेगा? अभी जैसे कोई, किसी ने मिथ्यात्व कर्म बांधा है, कोई संगी पंचेंद्रिय जीव ही इतनी लंबी स्थिति वाला बांधता है। एक इंद्रिय जीव तो एक सागर से ज्यादा नहीं बांधता।
तो मिथ्यात्व कर्म का एग्जाम्पल बताइए, बता रहे।
मिथ्यात्व कर्म ही है, उसका एग्जाम्पल आप कैसे
तो
चाहते
हैं? क्या करते हैं जो, जिसको आप मिथ्यात्व कर्म कहते हैं?
अच्छा, मिथ्यात्व कर्म क्यों बनता है ऐसा कहना है आपको? क्या करने से मिथ्यात्व कर्म बनता है? देखो, जो मिथ्यात्व परिणाम है ना, तो मिथ्यात्व परिणाम देखो, यहाँ जीव का मिथ्यात्व परिणाम है और वहां कर्म में हम कहेंगे वो मिथ्यात्व कर्म है। तो ये मिथ्यात्व क्या होता है? अभी जो विषय चल रहा है अपना, उसी का लगता हुआ फिर भी मैं बताऊंगी आपको। तो मिथ्यात्व ने क्या कि उल्टी मान्यता। किस संबंधी उल्टी मान्यता? वस्तु स्वरूप संबंधी उल्टी मान्यता। तो वस्तु स्वरूप क्या है? तो जो छह द्रव्य है उसमें कैसा कैसा द्रव्य का स्वरूप है और उसमें उसकी परिणमन व्यवस्था कैसी होती है। तो प्रत्येक द्रव्य अपने से अपने में स्वयं के कारण परिणमित होता है, फिर भी दूसरे के कारण ये कार्य हुआ, ऐसा जो हमारी मान्यता है, मान्यता में है। मिथ्यात्व यानी मान्यता का दोष, उल्टी कल्पना है सारी, भ्रांति चल रही है। तो ये इसका इतना फल बड़ा फल शरीर मैं हूं ये जो मान्यता चल रही है, क्योंकि ये तो परद्रव्य है, ये दिखाई दे रहा है ना आपको, जो दिखता है वो क्या है, पुद्गल द्रव्य, हमने उसको क्या माना, यही मैं हूं। तो जो मानने वाला है, पुद्गल तो कोई मानने वाला नहीं है, पुद्गल कुछ जानने वाला नहीं है, ये उल्टी मान्यता या सीधी मान्यता करने वाला तो जीव स्वयं है, और जीव ही इसको मैं हूं ऐसा मान रहा है। पुद्गल में तो कुछ ज्ञान ही नहीं है, वो तो जड़ है, वो कुछ नहीं मानता है कि जीव मैं हूं या जीव मेरा है। ये हम ऐसे सियाने हैं ना थोड़े ज्यादा, तो हम क्या करते हैं, जो कुछ जानने में आता है वह मैं हूं या यह मेरा है, यह मैंने किया, यह मेरा कार्य है, मैं इसको भोगने वाला हूं, यह जीव की मिथ्या मान्यता है, और इस मिथ्या मान्यता के कारण वो अनादि से घूम रहा है। तो इसमें से सुलझने का कुछ मार्ग होगा ना, कल भाई ने पूछा था ना, तो इसमें से सुलझने का मार्ग कौन बता सकता है कि जिसने मिथ्यात्व का नाश करके मोक्ष मार्ग प्रकट किया है और केवल ज्ञान प्राप्त किया है, तो जो सर्वज्ञ और वीतरागी है वे ही जीव वीतरागता प्राप्त करने का उपाय बता सकते हैं। तो पहले में पहले हमें ऐसा सच्चा उपदेश है कि नहीं उसका निर्णय करना पड़ेगा, क्योंकि मुक्ति दिलाने वाले तो बहुत सारे हैं, हम आपको मुक्ति दिलाते आप हमारे शरण में आ जाओ, ऐसे भी कहते हैं ना लोग, या अन्य अन्य उसमें तो क्या है, जितने जीव उतने उनकी भ्रांतियां होती है और उसने उपदेशक भी मिलेंगे, अभी तो वर्तमान काल में तो और ज्यादा बढ़ गए सब। तो ये सच्चा उपदेश और ये भगवान का सच्चा स्वरूप, मोक्ष मार्ग पूरा जहां से शुरुआत होती है वहां से लेकर अंत तक पूरा मोक्ष मार्ग, इस संबंधी हमें सही जानकारी और सही निर्णय होना आवश्यक है। आपको यहां से कहीं जाना है और आप कार से ड्राइव करने वाले हैं, तो जाने के पहले निश्चित करते हैं ना कि ये रूट है उसका, क्या बस गाड़ी में बैठे और चल बस है, तो रास्ते में कहां क्या है, कहां वो पेट्रोल आपको गैस कहां मिलती है, और बीच में कोई मोटेल वगैरह है कि नहीं, कहीं खाने पीने की व्यवस्था, अभी हम तो जई नहीं है तो अपनी कुछ व्यवस्था होगी कि नहीं होगी, तो पूरे रास्ते का पहले में पहले हम बराबर ज्ञान करते हैं, निश्चय करते हैं, फिर हम उस मार्ग पर चलते हैं। तो हमें मोक्ष प्राप्त करना है तो पूरा ही मोक्ष मार्ग, सम्यक दर्शन से लेकर मोक्ष तक का पूरा मार्ग, फिर उसमें वो श्रावक आ गए, मुनि आ गए, वो सब क्षपक श्रेणी कैसे होते हैं, अरिहंत भगवान कैसे होते हैं, सिद्ध भगवान कैसे, वो पूरे का सभी का स्वरूप नक्की होना चाहिए, निर्णय सहित अपने ज्ञान में निश्चित होना चाहिए, तभी उस जीव को वो प्रकट होगा मोक्ष का मार्ग। वो सम्यक दर्शन प्रकट होने के पहले पहले क्या होता है, ये सब ये पांच लब्धि में आने वाली बात है। तो ये जिसे मिथ्यात्व है तो उसे तो इतना बंद होता है, तो ये बंद नहीं तो चाहते, हम बंद तो नहीं चाहते, तो नहीं चाहते तो क्या मार्ग है, तो मिथ्यात्व मत करो तो बंद उसका उतना नहीं होगा, ये मैक्सिमम बंद तो मिथ्यात्व का होता है, मिथ्यात्व चला जाने के बाद भी अन्य कर्मों का बंद होता है, परंतु वो कम स्थिति वाला हो जाता है, जैसे मिथ्यात्व अवस्था में कोई ज्ञानावरण का बंद करता है तो अधिक से अधिक 30 कोड़ाकोड़ी सागर का होता है, तो उसकी आबादा कितनी होगी, 3000 वर्ष की, उस प्रपोर्शन में होती है। अब हम आगे बढ़ेंगे, तो आबादा काल के बाद लगातार कर्म खिरते रहते हैं हर समय में, जब तक स्थिति जितनी बांधी है वहां तक, उसको क्या कहते हैं, उसका उदय काल। पहले हमने क्या देखा, स्थिति बंदी कितनी, उसमें से आबाधा काल को माइनस कर दो तो रिमेनिंग है, उसको उदय काल कहेंगे। उदय का एक साथ उदय में आने वाले कर्म परमाणुओं के समूह को निषेक कहते हैं, ये पारिभाषिक शब्द है, क्योंकि आगे चलकर हम कहेंगे बस उस निषेक में से कुछ परमाणु नीचे आए, ऐसा ही कह देंगे, तब याद आना चाहिए अरे हम निषेक किसको कहते थे, इसलिए पारिभाषिक शब्द यहां हम पहले सीख रहे हैं। एक समय में बंधे हुए कर्म लगातार अनेक वर्षों तक उदय में आते रहते हैं, हम प्रति समय कर्म बांधते आ रहे हैं, इसलिए जिन कर्म परमाणुओं की स्थिति पूरी होती है वे अलग अलग अनेक समयों में बंधे हुए परमाणु एक साथ उदय में आते हैं। क्या कहा, एक समय में बंधे हुए परमाणु का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, फिर दूसरे समय में बंधे उसका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, तीसरे समय में उसका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। तो क्या होता है, सत्ता में तो वो सारे ही कर्म परमाणु बंधे पड़े हैं वहां पर, अलग अलग समयों में बंधे हैं, और अभी एक समय में जो बंधे हुए की जो निषेक रचना हुई थी उसको यहाँ दिखा लें, ये एक समय में बंधे हुए है, अब यहाँ दूसरे समय में बंधे, तीसरे समय में, तो जिसकी जिसके निषेक किस समय पर पड़े हुए है वो सब एक साथ उदय में आएंगे, अलग अलग समयों में बंधे हुए एक समय में उदय में आते हैं, और उनका फल भी उनके अनुभाग के अनुसार मिलता है। अब उसका अनुभाग कैसा होगा पता नहीं, कुछ का ज्यादा है किसी का कम है, तो उसका अनुभव किस रूप से उदय में आएगा उस रूप से उसका फल भी मिलेगा। इस तरह सत्ता में जो कर्म पड़े हैं उनमें जो जो परमाणु समान स्थिति वाले हैं, अब ये सत्ता की बात है, पहले हमने बंध की बात देखी थी, बंधने के बाद आबादा है और उसके ऊपर सारे निषेक रचना है, अब बंधने के बाद सत्ता में पड़े रहते क्योंकि हर समय बंध रहे बंध रहे बंध रहे बंध रहे, तो सारे एक साथ अभी उसकी निषेक रचना अलग से बताएंगे, जैसे यहाँ बताई है वो तो वर्तमान समय से लगाकर पड़े हैं, क्योंकि जिनकी आबादा पूरी हुई है उनका निषेक तो यहाँ वर्तमान में आया है यहाँ पर, क्योंकि इसकी आबादा पूर्व में ही निकल चुकी है, तो अभी यहाँ ये सारे अलग अलग समयों में बंधे हुए सब लॉट मिलकर ऐसे ये इसको कहेंगे सत्ता के निषेक। वर्तमान में अभी जितने परमाणु उदय में आ रहे हैं वो कब बांधे थे, अलग अलग समयों में, और अभी उसमें से सब मिलकर अभी उदय में आ रहे हैं, इसे सत्ता का निषेक कहेंगे। इसमें से प्रति समय एक निषेक उदय में आकर खिर जाएगा। वर्तमान समय में उदय में आने वाले निषेक को प्रथम निषेक कहते हैं, उसे आड़ी रेखा से बताते हैं, उसके ऊपर दूसरी आड़ी रेखा खींचते हुए द्वितीय निषेक बता, ये जो यहाँ हमने ड्राइंग बताया है, तो एक एक समय में एक एक निषेक, इस तरह प्रत्येक कर्म के, ज्ञानावरण के अपने, दर्शनावरण के अपने, मिथ्यात्व के अपने, जितने अभी उत्तर प्रकृतियां देखी ना हमने, नाम कर्म की भी इतनी सारी देखी है, हर एक कर्म की अपनी अपनी अलग अलग निषेक रचना होती है, ऐसे अनेक कोड़ाकोड़ी सागरों के निषेक सत्ता में पड़े रहते हैं। अभी हम अविभाग अनुभाग की बात करते हैं, देखो एक पैराग्राफ छोड़ के नीचे, कर्म परमाणु में स्थिति के साथ साथ विशिष्ट अनुभाग भी होता है, क्योंकि हमने देखा था एक ही समय में जो बंध होता है उसमें जितनी स्थिति है उसको तो हमने स्थिति कह दी, अब ये जो सारे स्थिति में उसके लगा यानी डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है उसमें प्रत्येक परमाणु में अपने अपना अनुभाग देने की शक्ति है, फल देने की शक्ति है, उसको हम मापेंगे किसमें, तो अविभाग प्रतिच्छेदों में, अविभाग प्रतिच्छेद इज अ यूनिट, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ पावर। अब हम ज्ञान की शक्ति नापनी है तो हम कहेंगे वो ज्ञान के अविभाग प्रतिच्छेद, प्रत्येक पर्याय की अपनी अपनी जो शक्ति होगी, अब जो मिथ्यात्व कितना है तो मिथ्यात्व के अविभाग प्रतिच्छेद कहेंगे, कर्म के अपने अपने। तो यहाँ देखते हैं कर्म परमाणुओं में स्थिति के साथ साथ विशिष्ट अनुभाग भी होता है, उनकी अपनी फलदान शक्ति होती है, इस शक्ति को अविभाग प्रतिच्छेदों में नापा जाता है, वो उसका यूनिट है, जैसे हम कपड़ा मापते हैं किसमें, लीटर में, मीटर में, अच्छा आपके यहाँ मीटर में नापते हैं
कपड़ा,
हाँ, हम हमारे यहाँ लीटर में नापते, क्यों भाई नहीं और लिक्विड में नापना है तो हम लीटर में नापेंगे। हाँ, शक्ति के सबसे छोटे अंश को अविभाग प्रतिच्छेद कहते हैं, कर्म परमाणुओं में उनकी शक्ति के अविभाग प्रतिच्छेद होते हैं, इसलिए एक कर्म परमाणु को एक एक वर्ग कहा, क्या कहा यहाँ लिखा है देखिए, ये वर्ग कहा, यहाँ पर वर्ग का अर्थ क्या है, कर्म यहाँ पर कर्म परमाणु, क्यों, क्योंकि उसमें अपने अपने विशिष्ट अविभाग प्रतिच्छेद होते हैं। मान लेते हैं एक कर्म परमाणु में 100 अविभाग प्रतिच्छेद है, ये कहने के लिए वो होते अनंत है और उसके भी वेरिएशन बहुत है, हमने मान लिया कि 100 डिग्री मानेंगे ना, उसमें 100 अविभाग प्रतिच्छेद है, तो दूसरा भी कोई परमाणु है उसमें भी 100 है, तो वो 100-100 वाले अनेक वर्ग कहेंगे हम,
समान वर्ग वाले
नहीं, वो अविभाग प्रतिच्छेद जिसमें जितना है, किसी में 100 है, किसी में 200 है, किसी में 201 है, जो कुछ है वो सारे अलग अलग वर्ग कहलाएंगे। अब वर्गणा किसको कहना, तो जिन जिन परमाणुओं में 100-100-100-100 है उन सबको हम क्या कहेंगे, मिलकर वर्गणा कहेंगे। जिन कर्म परमाणुओं में समान अविभाग प्रतिच्छेद है उसको हम वर्गणा कहेंगे, जिनकी वैल्यू यानी फलदान शक्ति समान है,
समान को वर्गणा कहेंगे।
इक्वल अविभाग वाले परमाणुओं को हम वर्गणा कहेंगे। अब वर्गणाओं में हम एक एक से बढ़ते हुए अविभाग प्रतिच्छेद देखे। देखो अभी हम मान लेते हैं ग्रुप है परमाणुओं का, सब में 100-100-100-100-100 अविभाग प्रतिच्छेद है, उसको हम क्या कहेंगे, वर्गणा। दूसरा एक लॉट है उसमें प्रत्येक परमाणु में 101-101-101-101 अविभाग प्रतिच्छेद है, उसको क्या कहेंगे, दूसरी वर्गणा। तीसरे में 102-102-102 वाले परमाणु है सब, उसको कहेंगे तीसरी वर्गणा। ऐसे बहुत सारे अनंत वर्गणा होती चली जाएंगी, अभी हम अनंत नहीं लेंगे, 100-101-102-104 ऐसे बहुत सारे। तो जब 200 का ग्रुप होगा ना, हमने 100 का ग्रुप देखा था, फिर 101-102-103-104-140 तक मान लेते लगातार है सारी वर्गणाए, फिर 200 से शुरू करना, 200-201-203-204 ऐसे, तो ये जो 100 से लेकर जितनी कुछ है उस ग्रुप को क्या कहेंगे, स्पर्धक। तो ये यहाँ तीन शब्द आए, वर्ग, वर्गणा और स्पर्धक। ये शब्द बारंबार आने वाले अभी आगे, आज थोड़ी मेहनत करेंगे, ऐसा लगेगा कि ये क्या टफ चल रहा है, मगर आगे चलकर जब इसके विवेचन आएगा और कैसे कैसे मोक्ष मार्ग में इसकी बातें बनती है तो एकदम सरल लगेगा आपको। तो ये वर्ग अभी हमने किसको कहा था, वर्ग, हाँ उषा बेन, अविभाग प्रतिच्छेदों से युक्त जो परमाणु है उसको वर्ग कहा, और वर्गणा समान अविभाग प्रतिच्छेद वाले जो परमाणुओं का ग्रुप है उसको वर्गणा कहा, और स्पर्धक एक एक अविभाग से बढ़ते हुए वर्गणाओं का जो समूह है उसको स्पर्धक कहा। तो स्पर्धकों में भी अभी हमने ऊपर तो गोले गोले निकाले, देखो ऊपर ये पहला है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांच, इसको स्पर्धक नाम दिया है। तो ये स्पर्धक यानी क्या है, अनेक वर्गणाओं का समूह है। हमने देखा 100-101-102-103-104 से 140 तक समझो, तो ये 100 से लेकर 140 तक के जो ग्रुप है उस ग्रुप का नाम क्या है, स्पर्धक, इसको हम पहला स्पर्धक कहेंगे। 100 से डबल 200 हो गए, 200 से लेकर जो ऊपर है उसको कहेंगे दूसरा स्पर्धक। 100 से तिगुना हो गए, 300 हो गए, 300 से लेकर तीसरा स्पर्धक, 400 से लेकर चौथा स्पर्धक। हम हर समय बांध रहे भाई, सुनते सुनते इतना कंटाला आ गया, वो अनंत ही है, स्पर्धक भी अनंत है। देखो एक वर्ग है जो है उसमें अविभाग प्रतिच्छेद भी अनंत है, ऐसे अनंत वर्गों का समूह उसको वर्गणा कहेंगे, अनंत वर्गणाओं के समूह को स्पर्धक कहेंगे, और हर समय ऐसे अनंत स्पर्धक बनते हैं। उसका अर्थ क्या है, मिनिमम अनुभाग से लेकर मैक्सिमम अनुभाग तक के अलग अलग वेरिएशन होता है एक समय में बंधे हुए परमाणुओं में। हमें ऐसा लगता है 70 कोड़ा कोड़ी का बंध किया, अनंत परमाणुओं में उतनी स्थिति नहीं पड़ी है। अभी हमने जो आपकी पुस्तक में वो जो आबाधा काल की जो रचना है ना, उसमें जो पहला निषेक है वो कब खिरेगा, 7000 वर्ष और एक समय में, तो उसकी स्थिति कितनी है उन परमाणुओं की, 7000 वर्ष और एक समय। कुछ बीच वाले ऐसे परमाणु होंगे जो लाख साल के बाद गिरेंगे, उनकी स्थिति कितनी, 1,00,000 वर्ष। कुछ ऐसे की 1 करोड़ वर्ष के बाद खिरेंगे, उनकी स्थिति कितनी है, 1 करोड़ वर्ष। और वो अंतिम लॉर्ड जो है, अंतिम निषेक, उसकी स्थिति कितनी है, 70 कोड़ा कोड़ी। तो अनंत परमाणु बंध है, तो अनंत में हरेक की अपनी अपनी स्थिति अलग अलग होगी और हरेक के अपने अपने कुछ अलग अलग अविभाग प्रतिच्छेद होगे परमाणु में, और ये सारे परमाणु अपने परिणामों में इतनी वेरिएशन होती है कि उसमें ये सारा उसमें भी बहुत डिटेल्स है। हम खाली क्रोध हुआ इतना ही कहेंगे, उसमें बहुत सारी विशेषताएं होती
है। तो ऐसा है कि इतना तीव्र परिणाम ऐसे ज्यादा स्पर्धक
है, जितने तीव्र परिणाम है मिथ्यात्व के तीव्र परिणाम कहो या क्रोधादि के तीव्र परिणाम कहो, उतना ये तीव्र अनुभाग बनता है, उतनी स्थिति ज्यादा बनती है।
तो नंबर ऑफ स्पर्धक डिसाइड अनुभाग,
नीचे के स्पर्धक वो कम अनुभाग वाले और ऊपर के है वो तीव्र अनुभाग वाले। तो कितने स्पर्धक बंधे हैं, वो तो अनंत में बनते हैं। अब उस स्पर्धकों में भी हम अभी उसके नाम देखेंगे थोड़ा, कि बहुत टेंशन आया ना। देखो ये सब हम देखते हैं ना तो ऐसा लगता है ये क्या है, कैसे कैसे रचना होती होगी एक समय में बंध रहे, अरे इतनी बड़ी भूल, क्या इतनी छोटी भूल और इतनी बड़ी उसके लिए सजा। ये छोटी भूल नहीं है, बहुत बड़ी भूल है, क्योंकि हम मिथ्यात्व क्या यही नहीं समझे है अनादि से, और हमें लगता है इतनी सी भूल और उसकी इतनी सजा चल रही है। इतनी सी भूल है तो सुधारने में भी इतना ही कष्ट लगेगा, परंतु वो सुधारना नहीं चाहते, अपनी मान्यता छोड़ना नहीं चाहते। वी वॉन्ट टू स्टिक टू दैट सेम ओल्ड कंसेप्ट। हमारे बाप जाते गरीब थे, हम गरीब नहीं रहना चाहते। वो तो कुछ उनका वेश पहराव अलग था, हम उसमें भी नया चाहते कुछ चेंज, और मान्यता में हम तो ओरिजिनल जो महावीर की है ना वो चालू रखो ना, नहीं मगर बीच में इधर उधर हो गए सब, तो जो कुछ इधर उधर हुए हैं तो हम उसी को पकड़ के रखना चाहते हैं। जो मूल बात हमारे हाथ में आती है कभी कभी किसी किसी के, तो फिर हम वो भटके हुए फिर मूल मार्ग पर नहीं आना चाहते। यह बात होती है, क्योंकि हमने देखा था पहले तो जैनिज्म ही था, पर उसमें से कितने वेदांत वगैरह इतने उसमें से ही सब सेक्स बनते गए, अनादि निधन ऐसा जैन ही है। ये पंचम काल की विशेषता है, और वो भी हुंडासरिपिणी में कितनी इतने सारे अन्य मतियों की जो स्थापना हुई है वो इसी काल की विशेषता है खास, अन्यत्र इतना नहीं होता, बस एक जैनिज्म ही चलता है। देव में क्या है, बस एक वहां तो जिन बिंब ही है और जिन धर्म ही चलता है। अन्य विदेह क्षेत्र में क्या है, ये जो अन्य जो मत मतांतर हुए ना तो इसी काल में ये खास हो गए। हम कितने वो तो हमें तो मालूम भी नहीं, कोई वैदिक है अभी, कोई सांख्य मति है, वैशेषिक है, जैमिनिक है, चार्वाक है, अन्य कितने ही है। अब हम कहां तक आए थे, देखो ये वर्ग वर्गणा और स्पर्धक क्या होता है उसको हमने बिल्कुल स्थूल रूप से यहाँ देखा है। तो जीव कर्म का बंध करता है, तो जब हम कहते स्थिति बांधी तो हमें वो निषेक की बात याद आनी चाहिए, और अनुभाग बांधा तो ये स्पर्धक की बात याद आनी चाहिए। अनुभाग बताने वाले स्पर्धक होते हैं और स्थिति बताने वाले निषेक होते हैं। ये निषेक की रचना कहलाएगी और ये स्पर्धक यानी अनुभाग की रचना कहलाएगी। ये जरूरी नहीं है कि जो जल्दी निषेक उदय में आएगा वो कम अनुभाग वाला हो, ये जरूरी नहीं है। प्रत्येक निषेक में वैरायटी है अनुभाग की। अब किस अनुभाग में उदय आएगा, जैसे आएगा उसकी जो कोई थियोरी चलेगी वो हम बाद में देखेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। अभी हमने कल घाती कर्म और अघाती कर्म दो प्रकार देखे थे, तो उसमें से अभी हम जो स्पर्धक की अपेक्षा उसमें क्या क्या होता है उसको देखेंगे। वह नाम लिखे देखो, स्पर्धक घाती कर्म के और अघाती कर्म के। यह स्पर्धक लिखा है ना, घाती कर्म और अघाती कर्म। अघाती कर्म में हमने दो भेद देखे थे, पुण्य प्रकृति और पाप प्रकृति। जैसे सातावेदनीय क्या है, पुण्य प्रकृति, असातावेदनीय पाप प्रकृति, बाकी भी लिस्ट हमने देख ली थी। अब इनके जो स्पर्धक है अभी सत्ता में कोई पड़े हुए हैं, वो तो है तो अनंत है, हम उसको चार चार ग्रुप में डिवाइड करेंगे। घाती कर्म के जो स्पर्धक है, घाती कर्म कौन से, उनको नाम सबको एक ही दे देंगे। ज्ञानावरण के अपने स्पर्धक अलग है, दर्शनावरण के अपने अलग है, दर्शन मोहिनी के अलग है, चारित्र मोहिनी के अलग है, और वो अंतराय के अलग है। फिर भी उन स्पर्धकों को चार नाम देंगे हम, हरेक के अपने अपने। तो यहां मंदता की तीव्रता से और हम अगर देखेंगे तो देखो यहां नीचे क्या नाम लिखा है, यहां लता, यानी लता भाग वाले कहेंगे या लता कहेंगे। दूसरा है ये दारू भाग वाले, उससे ज्यादा स्ट्रांग है वो है अस्थि वाले, और फिर ये शैल घाती कर्मों के स्पर्धक है, फल देने की शक्ति वाले जो ग्रुप से स्पर्धक है। अभी हम स्पर्धकों में बताएंगे, हम कर्म परमाणु एक एक परमाणु की बात नहीं करेंगे। तो ये स्पर्धक अत्यंत मंद अनुभाग वाले स्पर्धक है, उसका नाम है लता भाग वाले। उससे जरा तीव्र अनुभाग है ऐसे जो स्पर्धक है उसको कहेंगे दारू भाग वाले। ये दारू है वो मध्य वाली दारू, वो नहीं, सूखी लकड़ी को दारू कहते हैं। जो लता है वो नरम है, बेल हा? और ये दारू जो है वो काष्ठ जिसको कहते हैं, सूखी लकड़ी, वो कैसे उससे कठिन है थोड़ी, और हड्डी कैसी है उससे भी स्ट्रांग है, और शैल यानी जो पहाड़ है पत्थर है वो तो एकदम अनब्रेकेबल है। तो वो जैसे वो तो दृष्टांत देके समझाए, वो नाम उनके है, परंतु यहां समझना क्या है, ये जैसे ज्ञानावरण कर्म है तो उसमें भी लता वाले कुछ कर्म है, दारू वाले है, अस्थि वाले है और शैल वाले है। ये किसकी बात हुई, घाती कर्मों की। अब हम अघाती कर्मों के नाम देखें। अघाती कर्म में दो भेद है, एक पुण्य प्रकृति है और एक पाप प्रकृति है। पुण्य प्रकृति के नाम हम देखते हैं, गुड़, खांड, शर्करा और अमृत। पुण्य अभी किसी ने शुभ भाव किए, माइल्ड वाला शुभ भाव किया, शुभ भाव की भी वेरिएशन होगी कि नहीं। अभी कोई हॉस्पिटल बांधता है, स्कूल खोलता है, एक दूसरे को मदद करता है, वो सारे अलग अलग वैरायटी के शुभ भाव तो है। किसी को गरीब को खाना खिलाया, ये सारे शुभ भाव है। और उससे जो कोई स्वाध्याय करता है, व्रतादि करता है, उसके शुभ भाव कुछ अलग टाइप के है। तत्व विचार करता है, स्वाध्याय करता है, वो और कुछ विशेष है शुभ भाव। और बस अभी आत्मानुभूति के पहले वाला वो करण लब्धि में जुड़ गया, अभी आत्मसन्मुख परिणामों में उस संबंधी उसके विकल्प चल रहे हैं, वो भी अभी शुभ भाव है, जब तक शुद्ध नहीं हुआ है तो हाईएस्ट क्वालिटी का शुभ भाव कहलाएगा। तो ये जो वेरिएशंस है उसके अनुसार यहां भी वो गुड़, खांड, शर्करा और अमृत ऐसे स्पर्धक भी अलग अलग बनते हैं। अब ये जो पाप प्रकृतियां है उसमें कैसे, नीम, कांजीर, विष और हलाहल। कड़वाहट की अपेक्षा ये अधिक अधिक कड़वाहट है, ऐसे ये अधिकाधिक स्ट्रांग है। पाप कर्म जो माइल्ड है उसका नाम क्या है, नीम वाले, यानी नीम अनुभाग वाले। फिर कांजीर यानी वो
काली जीरी
कड़ू कराए तू क्या कहते हैं, करिया तू हाँ, वो कड़वाहट ज्यादा है और उससे विष वो कड़वा है, और हलाहल जो स्ट्रांगेस्ट विष है वो उससे भी ज्यादा कड़वा। ऐसे ये पांच प्रकृतियों को नाम देके समझाया। अब घाती कर्मों के नाम कौन बताएगा, हाँ बेन बताओ, आप उषा बेन बोलता, नहीं घाती कर्म के स्पर्धकों के नाम, घाती कर्मों के स्पर्धकों के नाम,
लता, दारू, अस्थि,
शैल। हाँ, लता, दारू, अस्थि और शैल। अभी हम अघाती के नाम देखेंगे, जगदीश भाई आपको बताना है, आप पुण्य प्रकृति को बताना। हाँ,
गुड़ खांड शक्कर
और अमृत। और पाप कर्मों के, हर्षद भाई देख के बताना है आपको,
नीम, कांजीर, विष और हलाल।
हाँ, नीम, कांजीर, विष और हलाल, ये कितना आसान है ना, ये तो बच्चों का खेल है। तो ये स्पर्धकों के ऐसे नाम है, इसको चार स्थान वाले कहेंगे हम, चतुस्थानी ऐसे ऐसे। इसमें जो कुछ वेरिएशन होता है क्या होता है उसकी बात आगे, हमें तो अभी तो पारिभाषिक शब्द देखने हैं यहां पर। तो ये अभी हमने चार चार प्रकार के स्पर्धक देखे थे। देखो अभी इसमें जो स्पर्धकों में है ना, हमें हमें थोड़े अभी ये सर्वघाती देशघाती इसको देखना है। क्या कहते हैं? हाँ, प्रश्न पूछना।
जो आपने बोला कि प्रथम निश्चय होते हैं उसमें, इट्स नॉट प्रोपोर्शनल टू द अनुभव।
हाँ
बराबर। प्रथम निश्चय में ज्यादा परमाणु होंगे।
प्रथम निषेक में परमाणु ज्यादा होते हैं,
मगर अनुभाग
अनुभाग क्योंकि क्या है, अलग अलग समयों में बंधे हुए हैं और अलग अलग समय में बंधे हुए का वो लॉट है। पहला निषेक जो अभी सत्ता में पड़ा है वो अलग अलग समयों में बंधा था, तो उसका अनुभाग जो कोई मेजॉरिटी होगी उसका अनुभाग का फल मिलेगा वहां पर। तीव्र अनुभाग भी होगा, मंद अनुभाग भी होगा। जैसे हम कहते हैं ना, कभी क्रोध का तीव्र उदय होता है, कभी मंद होता है। हम देखते हैं कि ना, अपने परिणामों में कमतर तरतमता होती है, कभी माइल्ड होते हैं, मंद परिणाम होते हैं, कभी तीव्र परिणाम होते हैं, कभी शुभ परिणाम होते हैं, कभी अभी अशुभ परिणाम होते हैं।
तो मंद और तीव्र होगा,
परमाणु की संख्या पर नहीं निर्भर, उसके अनुभाग पर है। अनुभाग वहाँ तीव्र अनुभाग का उदय चल रहा है, तो यहाँ जीव के भी वैसे परिणाम चल रहे हैं।
तो तीव्र परिणाम में ज्यादा परमाणु होगा ऐसा नहीं?
ज्यादा परमाणु संख्या से कुछ नहीं है, संख्या से कुछ नहीं है, उसके अनुभाग से। देखो जैसे बंद के समय प्रदेश बंद होता है, प्रकृति बंद होता है, स्थिति बंद होता है, अनुभाग बंद होता है। ऐसे बंद होने के बाद सत्ता में पड़े है कर्म परमाणु। उदय में आता है तो क्या होता है, कितनी प्रकृतियों का उदय चलता है हर समय? आठों का। बंद तो आयु का कभी कभी था, परंतु आयु का उदय तो निरंतर चल रहा है ना। तो आयु का उदय मिट जाएगा तो सिद्ध दशा प्राप्त हो जाएगी। तब तक तो आयु का उदय निरंतर चल रहा है, तो आठों ही कर्मों का उदय चल रहा है। अरिहंतों को तो चार कर्मों का है, बाकी सबको आठों ही कर्मों का उदय निरंतर चल रहा है। तो उसमें से उदय किसका है, तो ये कौन सी प्रकृति है, तो हम कहेंगे आठों ही प्रकृतियों का उदय चल रहा है। प्रदेश उदय ने कितने परमाणु उदय रूप होते हैं, उसको प्रदेश कहेंगे। देखो जब मोक्ष मार्ग में जीव स्थित है तो उसकी निर्जरा होती है, परमाणुओं की संख्या अत्यंत बढ़ जाती है, असंख्यात गुणा हो जाती है। और फल कैसा मिलता है? पाप का फल मंद होता है और पुण्य का फल बढ़कर उदय में आता है। पाप यदि पहले बांधा हुआ कोई हलाहल विष वाला होगा, वो भी कांजीर और नीम होकर उदय में आएगा। वहां भी घाती कर्मों में शय और अस्थि वाले हैं, वो दारू और लता वाले होकर उदय में आएंगे, अत्यंत मंद होकर उदय चलेगा उनका। ये मोक्ष मार्ग में ऐसा ही होता है। मोक्ष मार्ग शुरू होने के समय दर्शन के पहले ये सारी अवस्था होती है, पंचलब्धि में यही सब देखना है हमको। वो क्या होता है वो पारिभाषिक शब्दों के द्वारा हम समझाएंगे।
कौन
से? अनंत अनंत परमाणु पड़े हैं। तो पहला एक समय प्रबद्ध खिरता था, यानी अनंत खिरते थे। अब कितने खिरेंगे? अनंत इंटू असंख्यात। ख्याल है ना?
और वो भी मंद।
हाँ, वो भी मंद होकर। ये तो विशेषता है। देखो अभी ज्ञानावरण का तीव्र उदय चल रहा है और अब हम स्वाध्याय कर रहे हैं। सुबह बात आई थी, जो स्वाध्याय करता है उसको समझ में आता है। तो तत्व की रुचि है, महिमा आती है और अत्यंत प्रीतिपूर्वक भले उसका ज्ञान की वो इंटेलिजेंस कम है मानते हैं, अब उसको रुचि पूर्वक वो तत्व सुनता है तो क्या होता है, उसके पहले के तीव्र अनुभाग वाले परमाणु मंद होकर उदय में आते हैं। तो आवरण मंद होगा तो ज्ञान क्या होगा? खुलेगा, ज्ञान विकसित होगा, सहज रूप से होगा। उसके लिए उसके कर्म में कुछ नहीं करना पड़ता, वो सहज ऐसी ऑटोमेटिक व्यवस्था है। जब आत्मा संबंधी रुचि भी जागृत होती है, अभी तो आगे की लब्धि भी नहीं, वो तो करण लब्धि तो बहुत दूर की बात है। पहली जो क्षोभम लब्धि है, उस काल में क्या होता है, सभी पाप कर्मों का उदय जो है वो मंद होकर, कितना मंद, अनंत गुणा मंद होता है अनुभाग। प्रति समय ज्ञानावरणादि समस्त पाप प्रकृतियों का अनुभाग प्रति समय अनंत गुणाहीन होकर उदय में आता है, उसको क्षोभम लब्धि कहेंगे। ये पहली लब्धि पांच लब्धि में से, और वहां क्या होता है, कषायों की मंदता होती चली जाती है अपने आप, सभी पाप कर्म अपने आप कम होते, उसका अनुभाग बंधे हुए का अनुभाग मंद होकर उदय में आता है। अदरवाइज एज इट इज वो चलता पाप का उदय अभी अत्यंत मंद होकर उदय में आता है। आप क्या बात कर रहे, समय दर्शन की बात छोड़ो, जो मुनिराज है उनके ऊपर इतना उपसर्ग हुआ ना, सियालनी ने भी खाया तो अंदर कैसे तीव्र परिणाम के पड़े हुए कर्म हो गए, ख्याल है ना। फिर भी उस काल में उनको उस संयोगों के प्रति उसका लक्ष्य नहीं है और वहां नया कर्म नहीं बांध रहे, तो उसमें से भी वो केवल ज्ञान तक प्राप्त कर सकते हैं। फिर भी ये समझना, जितना अंदर पड़ा है कर्म, वो सभी पाप कर्म अत्यंत मंद होकर हर समय उदय में आते रहते हैं। तो ये संयोग सहज रूप से उसके इसके लिए अनुकूल होते हैं। देखो आप कहेंगे अरे हम पर तो इतना बड़ा संकट आया है, कोई कहता है अरे समय हो गया, अच्छा हमारा किसी का मरण हो जाता है, जवान पुत्र भी मर जाता है, परंतु जिसको ये स्वाध्याय की रुचि है उसके तो समाधान होता ही होता है, परंतु अभी तो उसके तो वैराग्य का निमित्त बन जाता है, उसका पूरा लाइफ टर्न हो जाता है। कभी हमने देखा है ऐसे होते ना, कोई ऐसा संकट आता है कि वो तो बस वो बाकी की रुचि समाप्त हो जाती, इसमें जुड़ जाता है जीव, तो बस कल्याण ही कल्याण हो जाता है उसका। तो प्रतिकूलता को भी वो हम अपने अनुकूल बना सकते हैं। शरीर में रोग है तो जरूरी नहीं कि रोना धोना करते रहे, अरे शरीर भिन्न है मैं भिन्न हूं ये तो मेरा स्वरूप ही नहीं है, हम आत्मा की महिमा लाओ। बेन आप पूछ रहे थे ना कैसी लानी है, हाँ तो उसको भिन्न पहचान लो तो उसकी महिमा ही महिमा होती है। तो फिर वो रोग को भी वो हम अच्छा है चलने दो, उसका कार्य करता है हम अपना कार्य करेंगे, इस तरह से वहां भी अपनी विचारधारा चलती है। ये और आगे बात चलेगी ये सब, हाँ विषय अपना समय समाप्त हुआ। चौबीसों भगवान की जय।